नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक 66-70। पितरीपति रूपे से भवया नागशेरुषाम् अप्ररैवात्मनात्मानाम् जहात जग समझुताम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिव जी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलत परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को जोग शक्ति से त्याग दिया था। तात्पर्य। समस्त यज्ञों के प्रधान होते हुए भी शिवजी ने अपने लिए कोई आवास नहीं बनाया। सती एक महान राजा दक्ष के सबसे छोटी पुत्री थी और चूंकि सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुना था अतः राजा दक्ष अधिक प्रसन्न नहीं था। फलत जब भी वो अपने पिता से मिलती वो उनके पति को पति की आलोचना करते यद्यपि शिवजी निर्दोष थे। इस कारण से युवावस्था के पूर्व ही सती ने पिता दक्ष द्वारा प्रदान शरीर को त्याग दिया जिससे इसके कोई संतान न हो पाई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत मनु की पुत्रिया की वंशावली नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुई है। इसका पहले श्लोक 63 से हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। 63 से 64 तक दो श्लोक का अनुवाद हम पढ़ते हैं। अग्निशत बहिर्षत सम्म तथा आज्जप वे पितर है वे आतो साग्निक है अथवा निरग्निक। इन समस्त पितरों की पत्नी सदा है जो राजा दक्ष की पुत्री है। श्लोक 64। पितरों को प्रदत्त सदा ने वायुना तथा धारिणी नामक दो पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। श्लोक 65। सती नामक सलही कन्या भगवान शिव की पत्नी थी किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुए यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी। श्लोक इस प्रकार। भवस्य पत्नी तु सती भवम देव अनुव्रतः आत्मन सदृशं पुत्र न लेभे गुणशीलता। आज का श्लोक को अनुवाद फिर से। इसका कारण यह हुआ कि सती के पिता दक्ष शिव जी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलत परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को जोग शक्ति से त्याग दिया। हरे कृष्णा। तो सुबह के श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज इस अध्याय के अंतिम श्लोक है। अध्याय का नाम है मनु की पुत्रिया की वंशावली। तो हम सुनते आ रहे हैं इस मनु पुत्री की जो वंशावली है 66 श्लोक। इसका मतलब कम से कम दो महीना हम इस अध्याय में इस वंशावली को सुनते आ रहे हैं। एक जगह में बताते हैं इस अध्याय में कि सिन्मतो शुद्ध धानस्य शुद्ध पापो हरो परो। अगर कोई श्रद्धा के साथ इस मनोकन्या की वंशावली का श्रवण करता है, शुद्ध पापो हरो परो, वो तुरंत ही उसका सारे पाप विनष्ट हो जाता है। ये महिमा है, ये श्रुति फल है। तो आज अंतिम श्लोक है, हम सुनते आया और आगे भी इस मनुकन्या के पुत्री के वंशावली आगे और भी बहुत ही अध्याय में, जैसे सती की, सती दक्ष और शिव जी के बारे में आगे लंबा चर्चा है, तो सुनने का हमें अवसर मिलेगा। तो ये अगर सब श्रद्धा के साथ हम श्रवण करते हैं तो शुद्ध पाप हरो परो। जितना पाप है, इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम जद वैष्णव नाम प्रिय, ये श्रीमद् भागवत है, अमल पुराण है, ये स्पॉटलेस पुराण है। इसमें सब भगवान के दिव्य लीला, भक्त के दिव्य लीला है, जो श्रवण करते ही हम भौतिक कलमश से मुक्त हो सकते हैं और भगवत धाम लौट सकते हैं। तत्श्रीवन सुपटन विचारण पर भक्त विमोचन नरह। इसका पठन, इसका श्रवण से क्या होता है कि तुरंत ही विमोचन नरह, भक्त जन्म मृत्यु का चक्कर से विमोचन, वो विशेष रूप में वो मुक्त हो जाते हैं। तो हम थोड़ा पीछे एक बार हम रिकलेक्ट करते हैं क्या क्या हमने श्रवण किया है, क्या था इस अध्याय में। तो उसका एक बार हम पीछे जाते हैं, सब लोग कृपया ध्यान लगाइए, इस अध्याय में हमने क्या क्या श्रवण किया। तो मनोकन्या, कितना मनोकन्या थी, तीन, आकृति, देवहूति और प्रसूति, और दो पुत्र, उत्तनपाद और प्रियव्रत। उत्तनपाद और प्रियव्रत के बारे में कोई चर्चा नहीं आया। तो आकृति, आकृति के बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं आया इस अध्याय में। आकृति का शादी हुआ ऋषि नामक प्रजापति से, और ऋषि से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुआ जिसका नाम है यज्ञ और दक्षिणा, और इस यज्ञ और दक्षिणा से 12 पुत्र, ये सारे 12 पुत्र तुषिता नामक देव से, देवता के नाम से जाना जाता है। उस 12 पुत्र का नाम भी इसमें आया है। और इस अध्याय में 6 प्रकार के सृजन की वर्णन हुआ है, मनुष्य 6 प्रकार के जीव सृजन की वर्णना हुआ है। एक है मनु, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर और ऋषि। मनु, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर और ऋषि, इस प्रकार 6 प्रकार के जीव सृजन की वर्णना हुआ है। ये आकृति का, यही पर आकृति के बारे में इस अध्याय में ज्यादा नहीं है। फिर आगे आते हैं देवहूति के बारे में। देवहूति का शादी किससे हुआ, कर्दम मुनि से, और कर्दम मुनि से नौ कन्या, देवहूति का नौ कन्या उत्पन्न होते हैं। ये नौ कन्या के नाम इस अध्याय में आया है, कोला, पूर्णिमा, अनुसुआ, श्रद्धा, हवीरभू, गोति, क्रिया, अरुंधति। तो इसमें कोला का शादी मौरिसी से हुआ, पूर्णिमा का शादी कश्यप से हुआ, और इसका भी वंशावली भी का थोड़ा बहुत वर्णना हुआ। फिर अनुसुआ का शादी हुआ उत्तरी से। इस अनुसुआ और उत्तरी के बारे में थोड़ा विस्तार से इस अध्याय में वर्णना हुआ है कि उत्तरी ऋषि ने तपस्या किया था ऋक्ष नामक पर्वत में काफी साल तक। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को संतुष्ट करके उन्होंने सोम दत्तात्रेय और दुर्वासा नामक पुत्र को प्राप्त किया, उन्हीं का ही अंश अवतार थे। तो इसके बारे में थोड़ा ज्यादा इस अध्याय में चर्चा हुआ है। श्रद्धा को अंगिरा से शादी हुआ है, श्रद्धा से चार कन्या और दो पुत्र उत्पन्न हुए। हबीरभू का शादी हुआ पुलस्त से, फिर पुलस्त से अगस्त विश्रुभा आया, विश्रुभा का दो पत्नी ईरवीरा और केशिनी, ईरवीरा से कुबेर, केशिनी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण का उत्पन्न हुआ। फिर देवहूति का और एक कन्या जो गोती है, गोती का शादी हुआ पुलोह से, पुलोह गोती से तीन पुत्र कर्मश्रेष्ठ बरियान सहिष्णु, और एक कन्या जिसका क्रिया उसका शादी हुआ क्रुतु से, और इससे 60,000 महर्षि का उत्पन्न हुआ क्रिया से, जो सारे को एक साथ में बाल खिल्ल नाम से जाना जाता है। अरुंधति का शादी हुआ वशिष्ठ से, वशिष्ठ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। तित्ती का शादी अथर्व से, अथर्व ऋषि से। फिर अश्वशिरा, फिर भृगु मुनि का वंशावली के बारे में भी थोड़ा वर्णना हुआ है इस अध्याय में। और फिर आता है प्रसूति का, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का शादी हुआ दक्ष से, और इससे कितना कन्या उत्पन्न हुआ? 16 कन्या। 16 कन्या से 13 कन्या धर्म को दिया, और एक कन्या अग्नि को दिया, एक कन्या पितृलोक को दिया, और एक कन्या जो सती है जिसका शादी शिव जी से हुआ। तो यहां पर जो एक कन्या सती जिसका शादी शिव जी से हुआ है उसका बारे में इस श्लोक में, दो श्लोक में, इस अध्याय का दो श्लोक में उसके बारे में बताते हैं। पहले श्लोक, भवस्य पत्नी तु सतीम भावम देवम अनुव्रता आत्मन सदृशम पुत्र न लेभे गुणशीलत। भवस्य पत्नी जो सती है वो अपना स्वभाव में बहुत गुणशीलत थे, बहुत सारे गुण का अधिकारी थे, लेकिन भावम देवम अनुव्रता, भावों का सेवा में हमेशा निजुक्त थे, फिर भी आत्मना सदृशम पुत्र न लेभे, वो अपना गुण की बराबर पुत्र प्राप्त नहीं किया। उसका हेतु क्या है? अत्र हेतु, उसका कारण क्या है? उसका कारण इसे श्लोक में बताते हैं। पीतजी पति रूपे से भवाय अनागसे रुषाहा, पितरी अपति रूपे से भवाया अनागसे रुषा अपौरुरा। यहाँ पर अपौरुरा जो पाठ है, इस अपौरुरा शब्द से बताते हैं, पता चलता है जो वो पौरो होने के पूर्व अजोहात योग समझौता वो अपना शरीर को त्याग दिया था। आचार्य लोग इसके बारे में बताते हैं, यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि ये सती का पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसका कारण क्या है? क्या वो पुत्र का प्रार्थना को भी नहीं किया शिव जी? तो उससे आचार्य लोग बताते हैं, से पीतरी दक्ष भवाय अनागसे, दक्ष थे उनका पिताजी सती के, उनका स्वभाव क्या था? उनका शत्रुता था शिवजी से, और शत्रुता होने के नाते वो हमेशा शिवजी को गाली गलास करते थे, निंदा करते थे। और शिव जी क्या थे? अनागसे। शिव जी का कोई दोष नहीं था इससे, इसमें अनागसे। लेकिन क्रोध के कारण ये हमेशा उस निरपराध शिव जी को निंदा करते थे। तो सती उस निंदा को सुनकर क्रोधेन आत्मना, सती पिताजी से अपना पति शिव जी जो महान भक्त है भगवान के वैष्णव नाम जता शंभु, उस पति का निंदा सुनने के बाद उन्होंने क्या किया? जोगम अस्थित भवम भावयंती अग्नि धारणम, जोग में बैठ गया और जोग में बैठकर भवम भावयंती जी को ध्यान लगाया और जोग की शक्ति से अंदर को जला दिया। फिर उस जोग का अग्नि भी बाहर प्रकट हो गया और उनका देहांत हो गया। जहत त्यक्तवती ही, वो अपना शरीर को त्याग दिया। फिर विदुर जी अप्ररण जो शिव यहाँ पर सती अप्ररेव आत्मना आत्मनाम, समय से पूर्व पुत्र होने का समय से पूर्व शरीर त्याग दिया और आत्महत्या किया। तो विदुर जी छत छत प्रश्न पूछते हैं, अगले अध्याय में आएगा कि शिव जी के प्रति इस दक्ष का क्रोध करने का कारण क्या था। क्योंकि शिव जी चराचर गुरु है, शिव जी का कई सारे गुण बताते हैं विदुर जी ने, जिस चराचर गुरु और निर्वैर शांत विग्रहम, आत्मनाम कथम दृष्टि जगत दैवतम महत। ये शिव जी संसार के गुरु है, शत्रुता रहित है, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति है, फिर भी इस शिव जी के साथ इस वैरी भाव दक्ष प्रजापति का कैसे हुआ। और एक प्रश्न पूछते हैं कि ये सती अपना शरीर को त्याग दिया, जो सबसे कठिन काम है, कैसे शरीर को त्याग दिया। तो पूरा आगे दक्ष द्वारा शिव जी के साप वो अध्याय आता है। फिर शिव जी सती का संवाद, फिर लंबा दक्ष यज्ञ का विध्वंस, इतना लंबा अध्याय इस सती के बारे में लंबा वर्णन है, शिव सती दक्ष के बारे में। तो संक्षेप में हम उसमें जाते हैं, उस लीला में शिव पार्वती का, कि दक्ष का साथ शत्रुता वो कैसे हुआ। दक्ष ने जो दक्ष का ऐसा भी बहुत सारे और भी कन्या थी, बताते हैं शास्त्र में कि 60 कन्या थी उनका, लेकिन प्रसूति से इस 16 कन्या प्राप्त किया था। लेकिन इस कन्याओं में सती था, सती क्योंकि सती अपराध शक्ति है भगवान के, और सती को काफी तपस्या करके प्राप्त किया था दक्ष ने। ब्रह्मा का निर्देश से दक्ष ने तपस्या करके सती को प्राप्त किया था, और सती का जन्म हुआ था शिव जी से विवाह करने के लिए। सती जन्म लेते ही शिव जी का आराधना, शिव जी का पूजा शुरू किया है। सती का जो तपस्या, उसका वर्णना आता है कि सती एक बेलपत्र खा के रहती थी, एक दिन में एक बेलपत्र, वैसे और कुछ नहीं आहार करती थी। तो इस प्रकार तपस्या किया, बाद में वो भी बंद कर दिया। फिर शिव जी प्रसन्न होकर अपना पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किया। ये जो लंबा समय तक सती ने तपस्या किया, और ब्रह्मा जी सती को रिक्वेस्ट किया था जे तुम जाके धरातल में अवत शरीर धारण करो और शिव जी से विवाह करो। तो सती का उद्देश्य था सिर्फ शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त करना। इधर दक्ष ने अपना पुत्री का इतना गुण रूप देखकर उन्होंने और अपना धन संपद मद अहंकार में उन्होंने सती को एक अच्छा जमात को देने के लिए सोचा। और इधर शिव जी का स्थिति क्या था, शिव जी भस्म आदि पे मतलब शशान मशान में रहते हैं, उनका ड्रेस भी अच्छा नहीं है, अस्थि कंकाल पहनते हैं, अर्ध उलंग रहते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति को उन्होंने देने के लिए कभी राजी नहीं थे। लेकिन सती और शिव जी का जो प्रेम है वो वास्तव में दिव्य है। और एक दिन ब्रह्मा जी का अनुरोध से दक्ष ने सती और शिव जी का शादी करा दिया। पहले तो दक्ष ने बहुत ही चास्टाइज किया, जो छोड़ दो अपना मन से, जैसा कि आजकल भी इस प्रकार कहानी होते हैं, जो अगर कोई लड़की दूसरा पिता का पसंद नहीं है, ऐसा कोई लड़का से अगर प्रेम करते हैं तो पिता कितना सारे उपाय करते हैं उसको वापस ले आने के लिए। तो दक्ष प्रजापति ने भी ऐसा बहुत सारे उपाय किया है, लेकिन सारे उपाय उनका फेल हो गया, क्योंकि इनका तो दिव्य प्रेम है। तो बाद में जब ब्रह्मा के अनुरोध से जब शादी हो गया तो कैलाश में रहने लगा। और इसी समय कैलाश में जब रहने लगा तो शादी के कुछ ही समय बाद दक्ष ने दो यज्ञ किया, दो यज्ञ का शुरुआत किया। एक यज्ञ का नाम था वाजपेय और एक यज्ञ का नाम था बृहस्पति शव। वाजपेय यज्ञ का तुरंत बाद बृहस्पति शव यज्ञ करना पड़ता है। अरे सारे यज्ञों का उद्देश्य है भगवान विष्णु को संतुष्टि करना। और भगवान विष्णु को संतुष्ट करना मतलब उनका भक्त को भी संतुष्ट करना। और शिव जी है वैष्णव नाम यथाशंभु, शिव जी सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। मद भक्त पूजा अभाधिका, मेरा भक्त का पूजा मेरा से भी ज्यादा बढ़कर है, भगवान स्वयं बताते हैं। और इस यज्ञ में शिव जी को कोई निमंत्रण नहीं किया। इसका भी कारण हुआ है, एक बार एक यज्ञ अनुष्ठान में ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे, वहां पर सारे देवता मुनि ऋषि उपस्थित थे। और दक्ष उस सभा में प्रवेश किया। जब दक्ष उस सभा में प्रवेश किया, दक्ष का अंग ज्योति से चारी ओर आलोकित हो गया, इतना तेजस्वी पुरुष थे दक्ष। लेकिन बड़ा घमंड थे, क्योंकि अर्थ धन संपत्ति प्रजापति होने के नाते बहुत घमंड थे। और इनका अंग ज्योति का तेज से सारा सभा जब आलोकित हो गया तो जितना मुनि ऋषि थे सब लोग उठकर उनको स्वागत किया। लेकिन ब्रह्मा जी उनका पिता होने के नाते वो आसन में बैठे रहे, और शिव जी क्योंकि शिव जी भगवान का गुणावतार है तो शिव जी भी बैठे रहे, क्योंकि शिव जी सिर्फ भगवान को ही प्रणाम करते हैं। और भगवान का भक्त तो जो शारीरिक क्लेश से शारीरिक दोष से मुक्त है, शारीरिक भावना से मुक्त है, तो ये तो शरीर धर्म से आबद्ध थे दक्ष। इसलिए मन ही मन शिव जी ने प्रणाम किया भगवान को, लेकिन वो दक्ष को कोई सम्मान प्रदर्शन नहीं किया। इसके नाते दक्ष काफी दुखी हो गया और लज्जित हो गया, अपमानित बोध किया। और वहीं पर सारे सभा में शिव जी के बारे में उन्होंने बताने लगा, शिव जी का बहुत निंदा करने लगे। इवन शिव जी का निंदा करते करते अपना पिता ब्रह्मा जी को भी समालोचना किया। जो इन्हीं के कारण इन्हीं के बातों में आकर मैं इनको अपना पुत्री को दे दिया। मेरा पुत्री जो कि बताते मृगशावक्खा जो मृग नायना मेरा पुत्री को इस प्रकार एक मरकट लोचनो आदमी को दे दिया, जिसका बांदर का आंख के आंख है ऐसा आदमी को दिया। बहुत सारे कोटुआ कोरुआ शब्द बताते हैं कि प्रेत वासेशु प्रेत प्रेत जो मुंडो मरा हुआ आदमी का मुंडो वो जो धारण करते गले में, उस प्रकार उन्मत्तम जो उन्मत्त के वो भी उन्मत्त है, रुग नग्न जो नग्न रहते हैं, व्याप्त केश जिसका केश व्याप्त है चारी ओर, हस क्रंदनो कभी हंसता है कभी रोता है, चीता भस्म कित स्नान चीता भस्म को जो धारण करते हैं उसी से स्नान करते हैं, प्रेतो श्रुको निर्ग अस्थि भूषण ये मुंडो आदि धारण करके इस प्रकार रहते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति को मैं अपना पुत्री को दिया है, और किसका बात में आकर अपना पिता का बात में आकर, तो ब्रह्मा जी को भी समालोचना किया। तो जब इस प्रकार उस सभा में शिव जी का निंदा हुआ है, फिर इस अध्याय अगले अध्याय में हम देखेंगे सांप का सांप प्रति सांप एक दूसरा को सांप देते हैं, क्योंकि जिस सभा में वैष्णव का निंदा होता है वो सभा तुरंत त्याग करना चाहिए। अगर हम प्रतिरोध नहीं कर सकते, एक तो है उनका जिह्वा को काट देना चाहिए, उनको हत्या करना चाहिए, अन्य आत्महत्या करना चाहिए, अन्य तुरंत उस सभा को त्याग देना चाहिए जिस सभा में वैष्णव का निंदा होता है। तो यहां पर शिव जी का गोन नंदीश्वर ने साप देने लगा, जो शिव जी जैसा महान वैष्णव को भक्तों को जो निंदा किया है और जो श्रवण किया है ये सब जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमते रहेगा, ये सब दिव्य ज्ञान रहित हो जाएगा, और जो दक्ष है जो इस प्रकार वो तुरंत साग मुंडो को प्राप्त करेगा, इस प्रकार साप देने लगा नंदीश्वर ने। फिर भृगु मुनि ने भृगु भी साप देने लगा, इस प्रकार साप प्रति साप अगले अध्याय में हम देखेंगे। और शिव जी तुरंत उस सभा को अपना गोन के साथ उस सभा छोड़ के आ गया, शिव जी रहने लगा अपना कैलाश में। एक दिन सती ने देखा कि बहुत सारे स्वर्गों से विमान आकर उनके घर के ऊपर से जा रहा है, उस विमान में सवालंकार से सुशोभित देवकन्या अपना स्वामी के साथ उस विमान में जा रहा है। उनको पता नहीं है, स्वामी से पूछा, स्वामी को भी पता नहीं है। तो फिर जो तब क्षति ने जाकर उस देवकन्या देवताओं से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहा है? तो बोला, तुमको पता नहीं है, तुम्हारा पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा है, और उस यज्ञ में जितना सारे देवता मुनि ऋषि गंधर्व है सब लोग भाग लेने जा रहे हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं, तुम भी चलो। तो सती का मन में इच्छा हुआ कि मुझे भी जाना चाहिए अपना पिता का यज्ञ में। तो आके अपना स्वामी से रिक्वेस्ट किया, लेकिन शिव जी मना कर दिया कि मत जाओ, वह हमें निमंत्रण नहीं किया है तो हमें जाना नहीं चाहिए, हम निमंत्रित नहीं है तो वहां जाना नहीं चाहिए, कुछ भी अमंगल हो सकता है हमारे लिए। लेकिन फिर भी सती ने सुना नहीं है, फिर रिक्वेस्ट करने लगी कि हम तो पुत्री है, पिताजी का यज्ञ है, पिताजी का घर में अनुष्ठान है, हम बिना निमंत्रण में भी जा सकते। इस प्रकार लॉजिक दिखाया सती ने। फिर शिव जी अनुमति दे देते हैं, ठीक है तुम जाओ लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं, और हमारा साथी है ये गौन है, इन लोग को साथ में ले जाओ। तो साथ में लेके सती ने अपना पिताजी का यज्ञ अनुष्ठान में जाके पहुंचते हैं। आज जब यज्ञ अनुष्ठान में जाके पहुंचते हैं, सती का बड़ा इच्छा उत्कंठा थी कि मुझे मेरा जितना बहिन है, जितना रिलेटिव्स है, वो लोग मुझे बहुत ही उत्साह के साथ स्वागत करेंगे, लेकिन कोई उनकी ओर देखते भी नहीं है। इतना नेग्लेक्ट हुआ है, इतना दुखी हो गया है सती कि अभी ना वापस जा सकते हैं ना वह रह सकते हैं ऐसे स्थिति में। फिर उनका माँ जो प्रसूति ने उनको स्वागत करने के लिए आई, और तुरंत दक्ष ने उनको रुकाया, और दक्ष तुरंत शिव जी का गाली गलास करने लगा। वहां पर इस प्रकार गाली गलास है कि देखो उस जंगल के पशु का स्त्री आ गया, उसको तो हम इनवाइट नहीं किया फिर भी आ गया। जो जंगल के पशु है जिसका बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, डकैत है, जिसका साथी है, उनको मैं इनवाइट नहीं करना चाहा, उनका गौन को फिर भी आ गया, अपना पुत्री को इस प्रकार शब्द प्रयोग करने लगा और शिव जी को बहुत निंदा करने लगा। इस प्रकार निंदा सुनकर सती ने तुरंत ही डिसीजन ले लिया, इस पिता से जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, इस शरीर को मैं अभी दान कर देता हूँ, मृत्यु के रूप में, हम डेड बॉडी के रूप में अभी इनको वापस दे देता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा स्वामी का निंदा किया है जो महान वैष्णव है, भक्त है। फिर सती ने उच्च स्वर में उस सभा के जितना देवता थे, मुनि ऋषि थे, सबको संबोधन करते हुए कहा, आप लोग कितना निर्लज्ज है कि आप लोग इस यज्ञ में भाग लिया, जिस यज्ञ में स्वयं जो डिवाइन कैरेक्टर है शिव जी, वो भाग उसका निमंत्रण नहीं किया है, और इस यज्ञ में आप लोग कैसे आ गया, आप लोग कितना निर्लज्ज है। इस प्रकार देवताओं को संबोधित करके सती ने अपना पिताजी को भी कुछ शब्द प्रयोग करके योगासन में बैठ गई, और सती ने पहले बहुत सारे जोक किया था, और ऐसा भी अपरा शक्ति है स्वयं, तो योगासन में बैठकर तुरंत अग्नि को प्रकट किया है, अंदर से अग्नि से उन्होंने अपने आप को जला दिया, और फिर उस अग्नि बाहर में प्रकट हो गया और सती का देहांत हो गया। तब तुरंत सब लोग देखते देखते सबके सामने सब लोग कुछ बोल भी नहीं सका, कुछ नहीं बोल सका कोई, देखते देखते सबके सामने ऐसा हो गया, सब लोग शक हो गया कि क्या हो रहा है, और तुरंत ही इस संवाद न्यूज पहुंच गया किसका पास, शिवजी का पास। शिवजी ऐसा तो उन्मत्त है, दक्ष इसका पहले ही बताया उन्मत्त है, शिवजी वहां आकर पहुंचा, पहले शिवजी ने आकर नहीं पहुंचा, पहले शिवजी संवाद सुनकर अपना बाल को मिट्टी में फेंका और तुरंत एक असुर प्रकट किया। असुर का नाम क्या था,
वीरभद्र।
वीरभद्र, वीरभद्र का शरीर आकाश को छू जाता था, बहुत काला, बड़ा बड़ा आंख, बहुत लंबा हाथ, विशाल चेहरा उसका वर्णन है। उस वीरभद्र बहुत सारे सेना के साथ उस यज्ञ स्थल को अटैक किया, और यज्ञ स्थल को अटैक करके भृगुमुनि का जो शब्रु दारी उसको फाड़ के फेंक दिया उनका गोन ने, और एक एक करके सबको, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, और मल मूत्र से पूरा यज्ञ स्थल लंडो भंडो कर दिया, सारे देवता लोग भाग गया। और वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष को जाकर उस जहां पर बलि चढ़ाते थे पशु को, वहां पर लेकर दक्ष को काटने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उनका हाथ में जो अस्त्र थे, उस अस्त्र से दक्ष का शरीर उस शीर को नहीं काट पा रहा है। फिर वीरभद्र ने सोचा ये तो पशु की समान व्यवहार किया है, तो ये पशु का अस्त्र से इसका हत्या होगा। फिर जो बकरी को बलि देने वाला उस अस्त्र को लेके आए और उस अस्त्र से उसका शरीर से उसका शीर को अलग कर दिया। तो यज्ञ स्थल तो लंड भंड हो गया। अभी शिव जी पहुंचा यज्ञ स्थल में और सती का शरीर को लेकर उन्होंने उन्मत्त की भांति इधर उधर भागने लगा और तांडव नृत्य शुरू किया। हाँ, शिव जी का नृत्य जो है वो तो शिव जी का कोई ध्यान नहीं है और इधर विनाश की शंका आ रहा है सब देवताओं को, ये सृष्टि विनाश होने जा रहा है। शिव जी तांडव नृत्य कर रहे हैं, शिव जी का और कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ सती का चिंतन में, सती का शरीर का ही ध्यान में वो उन्मत्त है। तो सब देवता लोग, ब्रह्मा आदि सब जाकर विष्णु से प्रार्थना किया है जिस तांडव नृत्य को रुकाइए शिव जी का, अदरवाइज सृष्टि का नाश होने जा रहा है। फिर शिव भगवान विष्णु ने तुरंत शुक्र सुदर्शन को आदेश किया है और सुदर्शन जाकर उस शरीर को, क्षति का शरीर को खंड खंड कर दिया। कई में वर्णन है जो 7 खंड किया, कई में वर्णन है कि 52 खंड किया। तो जहां जहां उस खंड को गिरा है वो सब तीर्थ हो गया, भारत में महान महान तीर्थ हो गया। उसके बाद शिव जी को शांत करने के लिए सारे देवता लोग वहां पर आया, भगवान विष्णु भी आया और शिव जी से रिक्वेस्ट किया है जब शांत हो जाइए और इस यज्ञ अनुष्ठान को पूरा कराइए जो लंड भंड हो गया। तो अभी कैसे पूरा होगा, जो यज्ञ का जो जो यज्ञ कराने वाले जो दक्ष है वो तो मर चुका है, तो अभी से यज्ञ संपूर्ण होगा। फिर सब लोग विचार दिया कि कोई भी एक शरीर, कोई भी एक शीर इसमें इसको लगा दो, काट के आके लगा दो तो ये बच जाएगा। शिव जी ने दे दिया तो वो लोग को तुरंत मिला पास में बकरी का वो शील, और वो शील लेके लगा दिया और शिव जी का शक्ति से वो फिर जीवित हो गया। और तुरंत ही दक्ष ने अपना जो पाप है, अपराध है, वो अनुताप करने लगा और शिव जी को दंडवत प्रणाम किया। फिर उज्जोग संपूर्ण हुआ। इस प्रकार सती का देहत्याग इस अध्याय में, इस आगे 3-4 अध्याय में सती द्वारा शरीर त्याग, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, ब्रह्म द्वारा शिव जी को मनाना, इसे अलग अलग अध्याय आएगा। तो हम संक्षेप में ये सारे अध्याय को जो मूलभूत जो जो हिस्ट्री है वो हमने सुना है किस प्रकार सती इस श्लोक में अजोहत जग समझौता, सती का देह त्याग करने का वो जो कारण है वो हमने सुना है। और इस अध्याय समाप्त होने के नाते हम इस अध्याय का भी पूरा एक बार हमने उस वंशावली, मनु कन्या की वंशावली के बारे में भी हमने एक टेबल दिया आप सबको चिंतन करने का। तो हम यही समाप्त करते हैं, किसी का कोई प्रश्न है? उनका प्रश्न है सती ने बहुत पाप करके शिव जी जैसा स्वामी को प्राप्त किया है, तो सती शिव जी ने मना किया था यज्ञ में जाने के लिए, फिर भी उन्होंने यज्ञ में गया है, क्या ये पितामह के कारण है ना और कोई कारण है? इस अध्याय में हम देखते हैं स्त्री का जो स्वभाव है उस स्वभाव के कारण इसमें वर्णन आएगा। सती का भी इच्छा हुआ, जब देखा बहुत सारे देवता लोग उनका ही बहन लोग सब जा रहा है यज्ञ में और सब साज गोज के जा रहा है, तो उन्होंने भी अपना पिता से बहुत सारे अलंकार आदि प्राप्त किया था और आज तक धारण नहीं किया था, तो वो भी धारण करने का इच्छा हुआ जो वो सारे अलंकार आदि धारण करके मुझे भी अपना सारे रिलेटिव से बहन से मिलना है, जाना चाहिए मुझे। तो ये एक कारण था, मोह था, पिताजी के प्रति उतना ये नहीं था उनका, शुरू से ही पिताजी से उनका भाव अलग था, लेकिन उस यज्ञों में जाने का और सब रिलेटिव से मिलने का उनका एक भावना पैदा हुआ जब देखा सारे देवता लोग जा रहे। और शिव जी का बात नहीं माना है, शिव जी परम भक्त वैष्णव शिरोमणि अपना पति का ना बात नहीं माना, इसलिए ये अमंगल हुआ, इस अनहोनी होना हुआ। तो यहां पर स्वामी भक्ति और स्वामी का आदेश इत्यादि के ऊपर काफी महत्व दिया है, तो बहुत कुछ सीखने का है इस अध्याय में, मतलब इस लीला में। और कोई कारण अगर है तो मुझे पता नहीं कई बता सकते हैं। और कोई प्रश्न? ओके, राज विद्या प्रभु। बहुत अच्छा पॉइंट है, एक मिनट, बहुत अच्छा पॉइंट दिया, धन्यवाद राज विद्या प्रभु। जी का प्रश्न है, श्रुति अपना पिताजी के पास क्यों गए थे? अभी इसका पहले मैं बताया, क्योंकि यज्ञ हो रहा था वहां पर, तो यज्ञ में जाने के लिए उनका मन में इच्छा पैदा हुआ, इसलिए गया। ठीक है, आपसे बाद में बात करते हैं, अभी टाइम हो गया। ठीक है, आप पर्सनली बात करते हैं। गंतरा श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।